बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। एक अमरीकी मलून की तरफ से इस्लाम के खिलाफ बनाई जाने वाली तोहीन अमेज़ फिल्म के खिलाफ दुनिया भर में मुसलमानों के मुजाहरों का सिलसिला जारी है और पाकिस्तान में भी ये मुजाहरे मुसलसल जारी हैं और कहीं कहीं पर ये मुजाहरे जो हैं ये अब पुरतशद्दुद भी होते जा रहे हैं। लेकिन ये जो मुजाहरे हो रहे हैं, इन मुजाहरों की वजह से जो मुसलमानों का गम व गुस्सा है वो पूरी दुनिया पर वाज़े हो गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस सिलसिले में एक हुक्म जारी किया और पीटीए के हुकाम को बुलाकर ये हदायत के इस तोहीन अमेज़ फिल्म को पाकिस्तान में फौरी तौर पर ब्लॉक कर दिया जाए। जो हमारे वज़ीर दाखला हैं रहमान मलिक साहब, उन्होंने भी एक इंटरपोल को ख़त लिखा है और उनसे दरख्वास्त किया कि इस फिल्म को पूरी दुनिया में ब्लॉक किया जाए। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बावजूद अभी तक, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये फिल्म पाकिस्तान में कहीं ब्लॉक हुई है लेकिन अक्सर मुकाम पर, यह अक्सर जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पर अभी तक ये फिल्म मौजूद है। और ये बात मैं ऐसे नहीं कर रहा, मेरे पास इस वक्त लैपटॉप मौजूद है और यूट्यूब की वेबसाइट भी मेरे पास मौजूद है। फिल्म के कंटेंट ऐसे हैं कि मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन सिर्फ मैं सबूत के तौर पे ही आपको बता रहा हूँ। ये देखें कि ये फिल्म जो है ये अभी तक मौजूद है और इसको अगर आप चाहें तो देख भी सकते हैं, लेकिन ना देखें तो बेहतर है। नज़र आ रही है फिल्म, लेकिन मैं इसको ज़्यादा देर तक इसको चला नहीं सकता कोई भी। तो बताना सिर्फ आपको ये है, साबित सिर्फ ये करना है कि ये फिल्म जो है ये अभी तक पीटीए इसको ब्लॉक करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। अब इस फिल्म के खिलाफ जो रद्दअमल सामने आया है पूरी दुनिया में, उस रद्दअमल से एक चीज़ तो वाज़े हो गई है कि तौहीन रसालत और तौहीन कुरान का जो एक रुझान है ये आलमी अमन के लिए एक ख़तरा बनता जा रहा है। और जब भी इस किस्म की कोई फिल्म बनती है, कोई किताब सामने आती है, तो मुसलमान एहतजाज करते हैं। मुसलमान ममालिक की जो हुकूमतें हैं वो भी मुज़म्मती बयानात देती हैं। हमारी कौमी असम्बली ने भी पिछले हफ्ते सिलसिले में एक मुज़म्मती करारदाद मंजूर की, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होता। हालांकि अगर आप देखें तो जो यहूदी हैं उनका होलोकॉस्ट जो है उस पर बहुत से जो मगरबी ममालिक हैं वहाँ पर अगर आप बात करें तो कानून के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन मुसलमानों के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की तौहीन की जाए तो दुनिया में कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं है आलमी सतह पर जो कि इसको रोक सके। तो आज हम इस मौजू पे बात करेंगे कि वजह है कि हमारी पार्लियामेंट इस पर पहले भी करारदाद मंजूर कर चुकी है, पिछले हफ्ते भी मंजूर की, और दुनिया में 50 से ज़्यादा मुसलमानों की हुकूमतें हैं, इसके बावजूद ये जो रुझान है ये इस पर काबू नहीं पाया जा सका। इसकी क्या वजह है और हमारा रद्दअमल क्या होना चाहिए? क्या हमें तोड़ फोड़ करनी चाहिए या मुत्तहिद होकर अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए? तो आज हमारे पास मौजूद हैं जनाब साहबजादा फजल करीम साहब, जो रुकन कौमी असम्बली भी हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हैं। उनके साथ हमने दावत दिया जनाब अल्लामा नासिर अब्बास जाफरी साहब को, जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के मरकजी सेक्रेटरी जनरल हैं, बहुत शुक्रिया। और उनके साथ हैं जनाब नज़र मोहम्मद गोंदल साहब, पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सीनियर वफाकी वजीर। गोंदल साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं साहबजादा साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँ।
जरूर
साहबजादा साहब, पिछले हफ्ते जो हमारी कौमी असम्बली ने करारदाद मंजूर की उसका इनिशिएटिव आपने लिया, उससे पहले मुझे याद है 3 साल पहले भी एक करारदाद मंजूर हुई थी, वो भी इनिशिएटिव आपका था। तो उससे पहले भी मुझे याद है कि हमारी कौमी असम्बली इस सिलसिले में कई करारदादें मंजूर कर चुकी है। तो हमारी पार्लियामेंट से करारदादें मंजूर होती हैं और भी जो ममालिक हैं उनकी हुकूमतें भी इसकी मजम्मत करती हैं, लेकिन यह रुझान जो है इसको रोकने में हम नाकाम हैं, हमें इसका एतराफ़ करना चाहिए कि नहीं?
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं हामिद मीर साहब आपका और आपके अदारे का समीम कल्ब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने उस मलऊन के केस को अपनी ईमानी मोहब्बत के साथ जिस तरह उजागर किया, इस पर मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। पहली बात तो यह है कि मैं मजम्मत करता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला किया था, स्टेट को ये चाहिए था कि फौरी तौर पर उसकी इम्प्लीमेंट करती। उस पिक्चर के चंद एक इक्तबासात ऐसे हैं जैसा कि आपने फरमाया कि कोई साहिब ईमान आदमी और दर्द दिल आदमी उसको देखने का तसव्वुर ही नहीं कर सकता, और जो कोई खुदा न खासा जुरत भी करता है तो वो फौरी तौर पर जज्बात में आ जाता है। हुकूमत को चाहिए कि फिलफौर इसको बंद करें और इसके ऊपर एहतजाज करें। आपने फरमाया कि कौमी असम्बली के अंदर मुतद्दद रेजोल्यूशन पास हुए और आलम इस्लाम के अंदर भी मुतद्दद मरतबा उनकी जो असम्बलीज़ हैं उनके अंदर रेजोल्यूशन पास हुए, उसका होता صورت حال کچھ یوں ہے کہ جو ریزولیشن پاس ہوتا ہے حکومتیں اس ریزولیشنوں کی آنر نہیں کرتی. مثلا 3 سال پہلے میں نے اسی اسمبلی میں ایک یونانی مسئلے ریزولیشن پاس کروایا تھا جس میں منورٹی نے بھی مجھے سپورٹ کیا. اس ریزولیشن کے اندر یہ میں نے تحریر کیا تھا کہ پاکستان کی قومی اسمبلی یونائیٹڈ نیشنز کو یہ ریفر کرے کہ حضرت آدم علیہ نبی جناح علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اقوام متحدہ کا رکن ملک اس کا کوئی نمائندہ, کوئی جماعت یا گروہ یا کوئی طبقہ یا کسی قومی جرائد کے اندر کسی بھی نبی کی شان میں توہین کرتا ہے تو اس کے خلاف قانون سازی کی جائے. اور یہ بات میں نے جب جس دن قرارداد پاس ہوئی محترمہ اسپیکر صاحبہ سے پوچھی کہ 3 سال قبل میں نے جو ریزولیشن بھیجا تھا اگر وہ اقوام متحدہ کے لیجسلیشن برات میں لے ہو جاتا تو یقیناً یا تو وہ اس کو ریفیوز کرتے تو یا وہ اس کو ایکسپیکٹ قبول کرتے, لیکن ایسی بات نہیں ہوئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک واحد حل ہے او آئی سی, جو 50 سے زائد ممالک اسلامیہ کی ایک بڑی تنظیم ہے, وہ اب تک خاموش تماشائی ہے. 1.5 ارب کے قریب مسلمان جو ہیں سراپا احتجاج ہیں, ان کی حکومتیں ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. میری یہ رائے ہے کہ او آئی سی جدہ میں, مکہ معظمہ میں یا مدینہ منورہ میں امیڈیٹلی اجلاس کو کال کرے اور یونائیٹڈ نیشن کو ایجنڈے کے اوپر یہ شک لے کر آئے کہ ہم اہانت رسول کو اور کسی نبی کی شان کو اندر گستاخی کو برداشت نہیں کرتے. حالانکہ ہمارا ایمان ہے, قرآن پاک ہمیں یہ کہتا ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. آج لوگ جو ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ دوسرے انبیاء اور مرسلین کی تعظیم تکریم اور احترام نہیں کرتے, انہوں نے قرآن پاک کے فلسفے کو پڑھا ہی نہیں.
ٹھیک ہے,
ہاں جی
آگے چلتے ہیں سر. میرا علامہ ناصر عباس جعفری صاحب, جیسا کہ انہوں نے کہا کہ تمام انبیاء جو ہیں ان کی توہین کا راستہ رکنا چاہیے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں ہوتی بلکہ حضرت عیسیٰ کے خلاف بھی مغرب میں کئی فلمیں بنی ہیں. ایک فلم ڈیونچی کوٹ امریکہ میں بنی 2006 میں, اسی طرح دی ٹیمپٹیشن آف کرائسٹ ہے یہ امریکہ میں 1988 میں یہ فلم بنائی گئی, اور اس کے علاوہ بھی کتابیں بھی چھپتی ہیں وہاں پہ. تو آپ اتفاق کریں گے صاحبزہ فضل کریم صاحب سے کہ ایک عالمی سطح پر ایفرٹ ہونی چاہیے اور او آئی سی انیشیٹو لے اور او آئی سی کا رکن مسلم ممالک جو ہیں وہ اقوام متحدہ میں قرارداد پیش کریں کہ تمام انبیاء کی توہین کا راستہ روکا جائے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہاں موقع دیا گفتگو کا. میں سب سے پہلے اس عظیم ظلم پر قرآن کی یہ آیت تلاوت کروں گا, انا للہ و انا الیہ راجعون, اور سلام پیش کروں گا ان شہداء کو جنہوں نے عظمت رسول پر اپنی جانیں بھیجی, جانیں فدا کی. آج دیر بالا میں ایک اہل سنت بھائی شہید ہوئے, اور کل کراچی میں جو ظلم ہوا نہتے مسلمانوں پر جس میں خواتین تھیں, بچے تھے, اپنے گھر والوں کے ساتھ لوگ گئے ہوئے تھے, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گئے ہوئے تھے, ان پر فائرنگ کی گئی, انہیں گولیاں ماری گئیں, ان کے سروں میں گولیاں ماری گئیں, اور کراچی میں جو آج صبح شہید ہوئے علی رضا تقوی صاحب, ان سب دوستوں کی شہادت کو رسول خدا کی بارگاہ میں ہدیہ کے طور پر پیش کرتے ہیں, اور ہماری 1000 جانیں فدا ناموس رسالت پر, اور جو زخمی ہیں خدا کی بارگاہ میں دعا کہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. دیکھیے, لبرلزم ایک ایسا نظریہ ہے جو لوگوں کو خدا اور انبیاء کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے, چاہے وہ لبرل ڈیموکریٹک سسٹم ہو, چاہے وہ لبرل اکنامیکل سسٹم ہو, چاہے وہ لبرل سوشل سسٹم ہو, چاہے وہ لبرل ایجوکیشنل سسٹم ہو, چاہے وہ لا اور حقوق کا لبرل سسٹم ہو. یہ لوگوں کو انبیاء اور خدا کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں. ان کے ہاں انبیاء کا کوئی تقدس نہیں ہے, کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ لوگوں کو بے دین بنانا چاہتے ہیں, خدا سے دور کرنا چاہتے ہیں, انبیاء کے راستے سے ہٹانے کے لیے تمام کوششیں کر رہے ہیں. انبیاء کی تحقیر, انبیاء کی توہین, اولیاء اللہ کی توہین, مقدس کتابوں کی توہین, یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. میرے خیال میں مسلم امہ کا جو فطری رد عمل تھا اس نے بڑی حد تک اس مسئلے کو اجاگر کیا, اور عالمی سطح کے اوپر عالمی ذرائع ابلاغ بھی مجبور ہوئے کہ وہ اس کی مذمت کریں. آج امریکہ کے اندر بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں, اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان اہل کتاب کا, ان مسیحی بھائیوں کا, ان لوگوں کا جنہوں نے اس میں مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور کنڈیم کیا اس جرم کو جو عالمی سطح پر امریکہ میں انجام پایا. دیکھیے, حکومتیں اگر عوام کے جذبات کی درست ترجمان ہو جائیں تو یہ شاید مشکلیں پیش نہ آئیں اور لوگوں کو شاید سڑکوں پر بھی اتنا آنا پڑے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مسلمان حکمران اپنے عوام کے احساسات اور جذبات کی ترجمانی نہیں کرتے۔ پارلیمنٹ میں یہ اگر کل بل پاس ہوا تو امریکی وزیر سفیر کو بلانا چاہیے تھا وزارت خارجہ میں، احتجاج کرنا چاہیے تھا اور اس ظلم کے خلاف اعتراض کرنا چاہیے تھا۔ امریکن یہ کہتے ہیں، امریکی حد عقم یہ کہتی ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ غلط کام ہوا ہے، زبانی جمع خرچ کافی نہیں ہے بلکہ انہیں عملی طور پر اس کے خلاف اقدام کرنا چاہیے۔ 1.5 ارب کے قریب مسلمانوں کے احساسات اور جذبات کو دریا دار کرنا، رسول خدا کی توہین کرنا، جو افضل الانبیاء امام الانبیاء ہیں، تاریخ بشریت کی عظیم ترین ہستی ہیں، ہادی برحق ہیں، جو بشریت کو نجات دلانے کے لیے آئے تھے، خدا کے قریب لے جانے کے لیے آئے تھے، جو رحمت للعالمین تھے، اس طرح کا جرم کرنا اور امریکن کا یہ کہنا کہ یہ بس یہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر 2005 میں جب ڈنمارک کے اس کارٹونسٹ نے کارٹون بنائے تھے، اس کی حوصلہ افزائی نہ ہوتی، امریکن نے بھی کی، امریکی صدر نے بھی کی، اور جرمنی کی انجیلا میرکل نے اسے آزادی کا دفاع کا میڈل دیا، شجاعت کا میڈل دیا۔ جرمنی کے وزیر داخلہ نے کہا کہ اس کو ذرائع ابلاغ سے کہا یورپین کو کہ اس کو اور نشر کیا جائے۔ اگر اس طرح کے مجرمانہ کاموں کے مقابلے میں یورپ اور امریکہ سٹینڈ لیتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ میرے خیال میں اس کے پیچھے عالمی سیونزم ہے، اسرائیل ہے، او آئی سی۔ اگر مسلمان حکمران واقعاً رسول خدا سے محبت کرتے ہیں، ہمارے پاکستان کی حکومت اللہ کے نبی سے محبت کرتی ہے، پاکستان باقی ممالک سے فرق کرتا ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے، اگر یہ رسول خدا کی حرمت کا دفاع نہیں کر سکتے تو ہندو حکمران نے کہا
تو آپ ان کی رائے، ان کی تجویز کی حمایت کرتے ہیں؟
میں یہ کہتا ہوں کہ اس مسلمان حکمران اگر مل کر فقط اس پر اکتفا نہ کریں کہ ہم یونائٹیڈ نیشن میں چلے جائیں، امریکہ وہاں طاقتور ہے، کتنے یونائٹیڈ نیشن کے احکام کی پابندی کرتا ہے، کتنی پرواہ کرتا ہے، کیا افغانستان میں اس نے اٹیک کیا، عراق میں جو اٹیک کیا تھا اس نے،
نہیں جو ان کی تجویز ہے اس پہ بات کریں،
ان کی تجویز کی میں بات کرتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے، اتمام حجت ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر مسلم امہ جس طرح سے آج سڑکوں پر یونائٹ ہے اس مسئلے میں، مسلمان حکمرانوں کو بھی یونائٹ ہو کر سٹینڈ لینا چاہیے۔
نظر گوندل صاحب، پرائم منسٹر راجہ پرویز اشرف صاحب نے پی ٹی اے کو کہا کہ 12 گھنٹے کے اندر اندر آپ اس کو بند کریں، لیکن ابھی تک تو پی ٹی ایس کو بند نہیں کر سکی، حالانکہ صبح سپریم کورٹ نے حکم دے دیا تھا۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ صاحبزہ فضل کریم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر او آئی سی کے رکن مسلم ممالک اقوام متحدہ میں ایک مشترکہ قرارداد پیش کریں اور تمام انبیاء کی توہین کا راستہ روکنے کے لیے کسی عالمی قانون سازی کا مطالبہ کریں تو کیا آپ کی حکومت اس کی حمایت کرے گی؟
شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا سوال کا جواب دینے سے پہلے میں اس واقعہ کی پرزور اور نہایت شدت کے الفاظ سے اور بڑے دکھ کے ساتھ سے مذمت کرتا ہوں، اور جس ملعون نے یہ حرکت کی ہے اس کے لیے جتنے بھی سخت الفاظ کا چناؤ کیا جا سکے وہ کم ہے۔ دوسری بات یہاں تک تعلق ہے، یہ آپ نے بلاک کرنے کی، میں یقین سے میں کچھ یہاں جھوٹ نہیں بول رہا، میری اطلاع کے مطابق یہ بلاک ہو چکی تھی، لیکن آپ کی بات سن کے مجھے تھوڑی سی حیرانگی بھی، بلکہ میری اطلاع یہ بھی ہے کہ یہ بنگلہ دیش میں بھی بلاک ہو گئی ہے اور انڈیا میں بھی کسی حد تک، یہ بھی میرے پاس خبر تھی اور یہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن سے پہلے کی۔ لیکن جو ابھی آپ نے بات کی ہے، میں یہاں سے اٹھ کے یقیناً میں اس کو کا نوٹس کروں گا اور میں منسٹری انفارمیشن سے بات کروں گا۔ دوسری بات جہاں تک تعلق جعفری صاحب نے کہا ہے کہ فارن آفس کو بلایا جاتا، احتجاج کیا جاتا، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، لیکن تھوڑا سا میں ایک ریکارڈ کی درستگی ریاض کروں کہ جب مارس گراس میں آئے تھے فارن آفس میں بھی اس کو میں پروٹیسٹ کیا گیا تھا، ایون پریزیڈنسی میں ون لائنر پروٹیسٹ ہوا تھا، نیشنل اسمبلی نے بھی کیا تھا۔ جہاں تک تعلق ہے پاکستانی قوم کا یا گورنمنٹ اور قوم ایک ہی بات، اس مسئلے پہ تو ہم دو ہیں ہی نہیں، خواہ کوئی حکومت میں ہے خواہ کوئی اپوزیشن میں، میں وہ اس پہ بھی عرض کرتا ہوں۔ جہاں تک تعلق ہے یس، پروٹیسٹ کرنا چاہیے، لیکن گورنمنٹ کی پراپرٹی کو نقصان پہنچانے سے ہمارا پروٹیسٹ کوئی زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوگا۔
نمائش سے لے کر راستے میں کہیں پتھر نہیں لگا کسی کو، بچے اور کراچی میں بچے اور خواتین تھے، کسی کو پتھر نہیں مارا گیا، انہیں گولیاں ماری گئی۔
دیکھو میری سنو، مقصد ہے یہ، آپ میرے خیال میں اس پہ کوئی پولیس والا ہو، کوئی فوج والا ہو، کوئی گورنمنٹ کا سویلین آفیسر ہو یا پبلک کا بندہ ہو، میرے خیال میں اس پروٹیسٹ پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے وہ میری اطلاع کے مطابق، آپ کی بات درست ہوگی، میں لیکن جب تک وہاں وہ امریکن امبیسی پہ अटैक हुए वहाँ उन्होंने रोका, तो वहाँ ये मसला बना। तो दूसरी बात, मैं ओआईसी के हवाले से मैं यकीनन, मेरा लिखा हुआ इससे पहले भी कि 59 कंट्रीज की एक तंजीम है, और बड़े अफसोस के साथ मुझे भी कहना पड़ रहा है, हालांकि मैं समझता हूँ कि आज तक इसकी मीटिंग कॉल हो जानी चाहिए थी। मीटिंग कॉल होती, प्रोटेस्ट होता, एक रेजोल्यूशन होता, जैसे सबजादा साहब ने कहा है, एक इस पर कानून साजी के लिए रेजोल्यूशन होता जो यूएनओ में प्लेस किया जाता, तो यकीनन उसका एक मैसेज आता। एक और मुझे अभी एक मेरे जहन में आई है, मैं आपके विसात से वो कहना चाहता हूँ, मुमकिन है एक सोशल मीडिया रोल प्ले कर रहा है आजकल की सिविल सोसाइटी में। मैं ये समझता हूँ कि ये अगर ओआईसी की कंट्रीज़ को और यूएनओ को और बाकी जितने यूरोपियन अमेरिकन हैं उनमें अगर सोशल मीडिया को रोल प्ले करे तो मुमकिन है इसका भी एक पॉजिटिव इफेक्ट हो। तो इसको भी अगर हाईलाइट कर दें अपने प्रोग्राम के वाले से तो मेरा ख्याल में ये भी हमें मददगार साबित
होगा। सोशल मीडिया पे जो लोग ट्विटर पे हैं, हाँ, ईमेल पे हैं, वो यूनाइटेड नेशंस को ईमेल्स करें,
ओआईसी को, मतलब तमाम तंजीमों को, वो जो सिविल सोसाइटी है उसको ये मैसेज ज़रूर करें और मुसलमानों के जज्बात की तर्जमानी करें। और ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये तमाम मजहब का एहतराम जो है वो वाजिब है हम पे, खा कोई क्रिश्चियन हो, खा कोई कैथोलिक हो, खा कोई मुस्लिम हो, कम अज़ कम इस्लाम की आइडियालॉजी तो कभी किसी के जज्बात के साथ, जहाँ तक तल्लक है लिबरलिज्म का, तो लिबर्टी का तर्जमा ये हरगिज नहीं है कि तुम किसी के जज्बात को या किसी की
नजरिया
या किसी की आइडियालॉजी
फिलॉसफी है, वो लिबरल जो आप कहते हैं,
वो फिलॉसफी का तर्जमा
लिबरलिज्म की बुनियाद के ऊपर ये निजाम दुनिया में चलाया गया है उसी की बुनियाद पर, ये आजादी इजहार इसी का हिस्सा, आजादी बयान, ये क्या उसे कहते हैं आप जनाब के हम जिंसबाजी और ये सारे मसाइल, ये सारे उसी का हिस्सा है
जी। जो गलत है वो गलत है, उसका नाम कोई भी दे दिया जाए, लेकिन उसका तर्जमा ये तो हरगिज नहीं है ना कि किसी के जज्बात को, खा वो कोई मुस्लिम हो, खा कोई और मजहब हो, उसके साथ किसी किस्म की ज्यादती करना या मुश्तिल करना, ये तो कभी भी काबिल
नहीं। आप कह रहे हैं एहतजाज जरूर करें, लेकिन तोड़फोड़ नहीं करनी।
लेकिन इसमें थोड़ा सा पाकिस्तान की जायदाद है ना, इसको अमेरिकन को या दूसरों को तो कोई नहीं होता। और वो मलून का जो मेरी तलाया कि सुना है कि 50-60 आदमी उसके फॉलोअर हैं 30 करोड़ अमेरिकन में से, और अमेरिका में भी अगर एहतजाज हो रहा है तो यहाँ भी पुरअमन एहतजाज, क्या मैं भी हामी हूँ, हम सब हामी हैं, और इस पर कोई तफरीक वाली बात नहीं।
ये आपकी बात से हम इत्तेफाक करते हैं कि पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, लेकिन बराए करम आप हुकूमत को ये भी कहें कि जो लोग एहतजाज के लिए आते हैं उन पर गैर जरूरी गोलियां भी ना चलाएं, सीधी सीधी गोलियां मारेगी।
मैं अर्ज करता हूँ जिन जो लोग शहीद हुए हैं उसका दुख है, अफसोस है, लेकिन थोड़ा सा मैं ये भी, जहाँ तक आपकी बात है मैं इसके भी बात की तहरीर करता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में आप मेरी बात का भी आप पहले भी सेंशन कर चुके हैं कि हमें आपकी मुल्क की लोगों की जानो माल का बचाना हमारी।
इस पे आज एक बड़ा अहम बयान आया, सऊदी अरब के मुफ्ती शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला, इन्होंने एक आज एक स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने इस्लाम के खिलाफ बनने वाली जो फिल्म है उसकी मजम्मत किया, लेकिन साथ ही साथ ये कहा कि फिल्म के तनाजर में सफारती अमले पर हमलों की हम मजम्मत करते हैं, ये गैर इस्लामी फेल है, और ये फिल्म गैर पेशावराना तरीके से बनी, फिल्म को मुजरमाना और मनहूस करार दिया उन्होंने, और कहा कि सफारतखानों पर हमले भी इस्लामी तालीमात के खिलाफ हैं, और किसी के गलत फेल की सजा बेगुनाहों को नहीं देनी चाहिए। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन जो लोग एहतजाज कर रहे हैं वो उन पर गोलियां भी नहीं चलनी चाहिए।
बिल्कुल ऐसी बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन मैं मेरी एक इतला और भी है, इसको आप भी जरा वेरीफाई कर लें। मुझे कहा गया कि ये कुछ 14 मिनट्स का ट्रेलर सरदस्त चलाया उन लोगों ने और फिल्म बाकी है। मैं समझता हूँ इस पर हमें मुनज़्ज़म तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहिए कि कहीं खुदा न खासा ये दुनिया का अमन जो है ना वो तबाही।
ये बिल्कुल सही बात की है नज़र गोंदल साहब ने कि ये फिल्म जो है ये दुनिया के अमन के लिए भी खतरा बन सकती है। अब इस फिल्म पे जो हमारा रद्देमल सामने आ रहा है, यकीनन कोई भी जो गैरतमंद मुसलमान है वो इस किस्म की फिल्म पर खामोश नहीं रह सकता, तो हमें किस किस्म के रद्देमल का इजहार करना चाहिए, इस पर हमारी गुफ्तगू होगी एक वक्फे के बाद। गुफ्तगू में दोबारा खुश आमदेद। इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें आप देखें कि लिबिया में एक अमरीकी सफारतकार और उसके 3 साथी जो हैं वो पुरतशद्दद मुजाहरों के नतीजे में मौत का शिकार हो गए, और उस पर अमेरिका की तरफ से धमकी दी जा रही है कि वो वहाँ पे फौज भेज सकता है। इस वाक़े पर बरतानिया के एक मरूफ सहाफ़ी रॉबर्ट फिस्क ने आज द इंडिपेंडेंट में एक आर्टिकल लिखा है। रॉबर्ट फिस्क जो हैं वो मशरक़ वस्ता के अमूर के एक्सपर्ट हैं और अफ़गानिस्तान में भी पे भी उनकी एक किताब मौजूद है। उन्होंने लिखा है कि अमरीका ने लीबिया में मुअम्मर कज़ाफ़ी के मुखालफीन की हमायत की और अमरीका ने ही सऊदी अरब और कतर के अस्करियत पसंदों को हथियार और पैसे देने में मदद की और अब ये लोग जो हैं इन्होंने लीबिया में एक बड़ी तबाही को जन्म दिया है और ये लीबिया में पहले अमरीका के दोस्त थे, अब ये अमरीका के ख़िलाफ़ हो गए और अमरीका के सफ़ीर को साथियों समेत बेनगाज़ी में कत्ल कर दिया इन लोगों ने और अब अलकायदा अमरीका मुखालिफ मुजाहरों की सरबराही कर रहा है। इन्होंने आगे चल के ये भी लिखा है रॉबर्ट फिस्क ने कि अमरीका ने लीबिया में अलकायदा के बिच्छू को पाला और अब इसी ने अमरीका को डस लिया और अब वाशिंगटन शाम में बशर अल असद के मुखालफीन की हमायत कर रहा है और अमरीका सऊदी अरब और कतर की अस्करियत पसंदों को पैसे और हथियार देने में भी मदद कर रहा है। अगर बशर अल असद की हुकूमत चली गई तो यह बिच्छू लाजमी अमरीका को एक बार फिर डसेगा। तो इसका मतलब ये है कि वो अमेरिका जो कि अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में अलकायदा की और तालिबान की शदीद मज़म्मत करता है, उसी अमेरिका ने अलकायदा को लीबिया में पैसे भी दिए, असलाह भी दिया कर्नल कज़ाफ़ी के ख़िलाफ़ और अब यही लोग जिनको अमेरिका ने असलाह दिया इन्होंने वहाँ पे अमेरिकी सफ़ीर को कत्ल कर दिया। साहबजा फजल करीम साहब, अब ये तो रॉबर्ट फिस्क साहब कह रहे हैं कि अमरीका ने ही इन लोगों को असलाह दिया था जिन्होंने वहाँ पर एक अमरीकी सफ़ीर को कत्ल कर दिया। हमें ये बताइए कि क्या जिन लोगों ने कत्ल किया है अमेरिकी सफीर को लीबिया में, क्या ये हम सब मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं? हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से एहतजाज करना चाहिए?
पहली बात तो ये है जी कि जो आज मज़मून जिसका तस्करा आपने फरमाया है, हम 30 साल पहले कहते थे कि अलकायदा को मनसूबाबंदी के तहत दुनिया की दूसरी बड़ी सुपर पावर को कलेप्स करने के लिए पाकिस्तानी कौम के कंधे इस्तेमाल हुए हैं और एक्सट्रीमिज़म को हवा दी गई है। हमारी जमात की मरहूम क़्यादत जिनमें मौलाना शाह अहमद नूरानी और मौलाना अब्दुलस्तार नियाज़ी ने बाकायदा तौर पर कहा था कि ये जिहाद अख्वानिस्तानी, ये फसाद अख्वानिस्तान है। पूरी दुनिया के अमन को तबाह करने के लिए अलकायदा मिलिटेंसी को कायम किया गया, उनको प्रमोट किया गया, उनको फंडिंग दी गई, उनको एडवांस असला दिया गया और कत्लो कताल के बाजार को जो है वो गर्म किया गया। आज पाकिस्तान इन्हीं मसाइल का शिकार है और पूरी दुनिया इसी मसले का शिकार है। आपने तذکرہ फरमाया लीबिया का, ज़ाहिर बात यह है कि जिन लोगों को प्रमोट किया गया था कर्नल कज़ाफ़ी के ख़िलाफ़, और इसी तरह इजिप्ट के अंदर क्या हुआ, पहले शर्मुशैख ने जूनियर बुश ने तिलका हदूदुल्लाह कुरान पाक की हदूद के ख़िलाफ़ उसके प्रेसिडेंट से दस्तखत करवाए, उसके बाद जनाब उसके मुखालिफिन को सपोर्ट किया, उनको असलाह दिया और ह्यूमन राइट्स के नाम पर उनके हकूक़ को सलब किया गया हुकूमत को। और अब जो शाम में खेल खेला जा रहा है, और मुझे बहुत अफसोस है OIC पर कि लीबिया के ऊपर कदगल लगाने के लिए भी अमेरिका ने और अक़वाम मुत्तहिदा ने OIC को इस्तेमाल किया। अमेरिका ड्रोन अटैक कर रहा है, आज तक OIC ने इसकी मजम्मत नहीं की। हज़ारों अफराद लुकमा अदल बन गए, एक्सट्रीमिज़म को हवा दी गई, पाकिस्तान की दाखिली सलामती को जो है वो चैलेंज किया जा रहा है
जी,
और अमेरिका के ख़िलाफ़ बोलने के लिए कोई शख्स जो है वो तैयार नहीं है। अब हमने देखना ये है कि क्या अमेरिकन पॉलिसीज़ जो हमारे बाज़ नाआकबत अंदेश हुक्मरान फॉलो करते हैं अपने इक्तदार को दवाम बख्शने के लिए, क्या उनके ममालिक के अवाम इन पॉलिसी से खुश हैं? यकीनन खुश नहीं है। अभी आप देखिए यूनाइटेड नेशन जो है ये पूरे वर्ल्ड का एक अदारा है, उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके पहले के अंदर ये बात मौजूद है कि ह्यूमन राइट्स का तहफ़ करना और उसको प्रमोट करना
ठीक है
और इंसानी हकूक़ को। अब मेरा सवाल ये है कि 1.5 अरब कलमा गो मुसलमान है पूरी दुनिया के ऊपर, आज हम पर तो ये इल्ज़ाम है कि मुसलमान जो है वो लोगों के हकूक़ के तहफ़ की बात नहीं करते, और आज वो ह्यूमन राइट्स की तंजीमत कहाँ हैं कि 1.5 अरब के करीब मुसलमानों के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तोहिन की गई, और वो NGO फॉरन फंडिंग है। और मैंने मुतअद्दिद मरतबा पाकिस्तान में भी और आलम इस्लाम के अंदर जाकर भी ये मुतालबा किया, बीइंग वर्ल्ड जनरल सेक्रेटरी जमात अहले सुन्नत के, मेरी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में 15 साल पहले, हमने वहाँ पे मुतालबा किया था कि जो फंडिंग हो रही है आलम इस्लाम के अंदर बैन अल-अक़वामी दुनिया कर रही है मुख्तलिफ NGO के बारे में, इनको बंद किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हमें ये चाहिए कि इस किस्म की पॉलिसी बनाएं जिससे दुनिया के अंदर अमन कायम हो।
अच्छा नहीं, ये तो पॉलिसी तो हुकूमत बनाएगी ना। जाबरी साहब ये बताएं कि आप इस वक्त बतौर आप एक आलम दीन के, आप और जनाब साहबजा फजल करीम साहब, आप इस वक्त क्या कर सकते हैं कि जिससे कि मुसलमानों का जो एक इतिहाद है वो कायम हो और अक़वाम मुत्तहिदा पे एक प्रेशर बढ़े, आप खुद अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में क्या कर सकते हैं?
रहमान रहीम, इससे पहले कि मैं अर्ज़ करूँ कराची में निहत्ते पुरअमन मुजाहरीन पर गोलियां चलाई गईं। अमेरिकी कौंसलर ने शाबाश दी उनको, कातलों को। तर्जमान ने, जो इस्लामाबाद में अमेरिकन एम्बेसी है, इन्होंने वेल डन उन्होंने कहा इन कातिलों को, अफसोस का इजहार किसी ने नहीं किया। लिहाजा कराची की इंतजामिया, पुलिस का आई जी, डी आई जी, ए आई जी, वहाँ का होम सेक्रेटरी, वहाँ का वज़ीर दाखिला इस वक्त नामूस रसालत के परवानों को कत्ल करने वालों में शामिल हैं और उन्हें इस नकबत अंदेशी का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि उन्होंने कितना बड़ा जुल्म किया है। और जहाँ उस जुल्म से जो फिल्म की वजह से मुसलमानों के जज्बात जिरेदार थे, आज इसकी वजह से भी जिरेदार हो रहे हैं। एक बात देखिए, इसका हदफ और मकसद क्या था? इस्लाम के ऊपर एक सकाफती अलगार, रशिया के जाने के बाद इस्लाम और मुसलमानों को एक बड़ा दुश्मन बनाया गया अमेरिका और आलमी इस्तकबार ने। इनके दरमियान तफरका फैलाया जाए, इन पर सकाफती, ये उनका बड़ी रुकावट थी।
ये तफरके को खत्म करने के लिए आप क्या कर सकते?
सकाफती अलगार है जो कभी कुरान जलाने के, कुरान की बेहरमती, अंबिया की बेहरमती, कभी तफरका मुसलमानों में। मेरे ख्याल में ये बेहतरीन वक्त है मुस्लिम उम्मा की यूनिटी का और वहदत का। मेरी गुजारिश ये है कि तमाम उलमा और तमाम सियासी जमातें जो छोटे छोटे मसलों में सुनामी की बातें करती हैं, नामूस रसालत के लिए भी एक पाकिस्तान में सुनामी आना चाहिए। और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, तमाम दीनी जमातें, तमाम उलमा एक दिन ऐलान करें कि पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज होगा, तमाम सियासतदान, तमाम हुक्मरान, पूरा मन एहतजाज होगा और पूरी दुनिया देखेगी कि किस तरह यहाँ के सियासतदान भी, उलमा भी, शिया हो, सुन्नी हो, हत्ता यहाँ के मुख्तलिफ तबकात मसीही हैं, हिंदू हैं, वो भी हमारे साथ आएंगे और पूरा मन एहतजाज होगा। जब हुक्मरान एक तरफ हों, अवाम एक तरफ हों, फकत उलमा की जिम्मेदारी हो जाए तमाम उम्र को अंजाम देना, कुदरत और पावर जिनके हाथ में है वो इसमें शरीक ना हो, सियासी पार्टियाँ शरीक ना हो। मेरी इमरान खान साहब से, पीपल पार्टी वालों से, नून लीग वालों से, मुस्लिम लीग है, नामूस रसालत में मुस्लिम लीग कहाँ है? तहरीक इंसाफ इस इंसाफ के मरले पर कहाँ है? पीपल पार्टी अवामी जमात है, अवाम के जज्बा की तर्जमानी में कहाँ है?
आपने एक बड़ी अच्छी बात की है नजर गोंदल साहब, अलामा नासिर बाद जावरी साहब कह रहे हैं कि नामूस रसालत के लिए भी एक सुनामी आना चाहिए और आप सब मिलकर एक पुरमन एहतजाज करें पूरे मुल्क में, आप तैयार हैं इसके लिए?
मुझे इनकी बात से मुकम्मल इत्तफाक है, लेकिन जहाँ तक तल्लक पहले अलकायदा का और तालिबान का एक्सट्रीमिस्ट की बात सरदार साहब ने की है, ये भी देखना पड़ेगा कि वो कौन से अनासर हैं जिनको तालिबान को लीड कर रहे हैं, जो अलकायदा को लीड कर रहे हैं। यकीनन ये यहूदी का पैसा है और इसी पैसे की मदद से और इसी पैसे के प्रेशर पर अमेरिकन गवर्नमेंट भी यकीनन अंडर प्रेशर उनके, और जब वो जहाँ चाहती है वहाँ अपने इस इकानमी के ज़ोर से वो अमेरिकन को और बाकी फोर्सेज को यूज़ करता है। और यूज़ कौन होता है, मैं बड़ी माजरत के साथ कहूँगा कि पाकिस्तान में अगर तालिबान कोई इस किस्म की कार्रवाइयाँ करते हैं तो पैसा यकीन यहूदी का है और हम उसकी उसके बिहाव पे सारा कुछ कर रहे हैं। इसी तरह अलकायदा को भी कौन फीड कर रहा है? तो अगर हम आपस में पॉलिटिकल पार्टी, यकीनन ये सारे दोस्त पॉलिटिकल हैं, मतलब सरदार साहब तो सियासी आदमी हैं, नासर साहब का मुझे, जाफरी साहब का मुझे पूरा नहीं पता कि कहाँ तक पार्ट है, लेकिन इनकी फिक्का जाफरिया की पूरी सियासी जमात है। तो मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ एक प्लेटफॉर्म पे आ सकती हैं, लेकिन मैं उलमाया दीन से, और उलमाया दीन भी वो जो एक्सट्रीमिस्ट है, मैं सारों की बात बिल्कुल नहीं करता और बहुत अच्छे और बड़े पुरमन उलमाया दीन हैं जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेज को लीड कर रहे हैं। और यकीन मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि खुदा रहा जब तक आपकी पॉलिसी पाकिस्तान में और होगी, ईरान के हवाले से और होगी, इराक के हवाले से और होगी, मिस्र के हवाले से और होगी, ये सारे वो कंट्रीज़ हैं ना जहाँ कौन यूज़ हो रहा है, पहले भी निशानदेही की है, जैसे आपने अमेरिकन जो उधर सफारतकार मर्डर हुए उनमें उनको कौन अलकायदा की निशानदेही की है? अलकायदा अगर पाकिस्तान में और अमल करती है, मिस्र में और करती है, शाम में और करती है, तो बारहा मैं यही कहूँगा कि एक्सप्लॉयट मुसलमान हो रहे हैं और उनके बच्चे और नौजवान हो रहे हैं, तो वो यकीन उसमें उलमाए दीन का किरदार है। अगर ये थोड़ा सा मुस्बत हो जाए और एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए तो पॉलिटिकल पार्टी का, तो मैं, मेरी मुखालिफ जमात भी है, मैं दावे से कह सकता हूँ पाकिस्तान में जो परसों चौथ एहतजाज हुआ असेंबली में हुआ, उसके बैर हुआ, पाकिस्तान की तमाम मिनॉरिटी उस एहतजाज में शामिल थी, किसी को कोई एतराज़ नहीं।
इस वक्त भी एक
मैं एक्सट्रीमिस्ट उलमाए दीन से ये जरूर कहूँगा कि खुदा रहा
अगर वो एक्सट्रीमिस्ट हैं तो फिर उलमाए दीन किधर से हुए? फिर तो
क्या वो कहते तो अपने आप उलमाए दीन
है, क्या अपील कर रही?
ये दोनों सेकंड करेंगे।
इस वक्त हमारे साथ सेनेटर कामरान माइकल साहब मौजूद हैं जिनका मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, टेलीफोन पे जरा उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान माइकल साहब।
जी वालेकुम सलाम जी।
कामरान माइकल साहब, यहाँ पे तजवीज ये पेश की जा रही है कि एक नमूस रसालत के लिए भी पाकिस्तान में सुनामी आना चाहिए और तमाम जो अंबिया इकराम हैं उनकी तौहीन का रास्ता रोकने के लिए कानून साजी होनी चाहिए। तो अगर एक पाकिस्तान में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर एहतजाज करती हैं तो आप उसमें शरीक होंगे?
जी मैं समझता हूँ कि बिल्कुल, जहाँ पर भी शर पसंदी शरंगेजी की बात होगी और बैन अल-मज़ाहब हमांगी और मजहबी रवादारी के खिलाफ मनफी रवैया और रुझान सामने आएगा तो मैं समझता हूँ कि हम तो हमेशा से अलंबरदार रहे हैं बैन अल-मज़ाहब हमांगी के, मजहबी रवादारी के, अखुवत और भाईचारे के। तो मैं समझता हूँ कि इस मौका पर भी ये एक बिल्कुल ढकी छुपी बात इसमें नहीं है कि इस वक्त सिर्फ मुसलमान भाइयों के लिए नहीं, ये मैं समझता हूँ इंसानियत के खिलाफ एक क्रिमिनल इंसान को इस्तेमाल करते हुए एक साजिश रचाई गई है और हम अपने मुसलमान भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। और इसमें मैं बिल्कुल ये आपकी प्रोग्राम की हिसाब से बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर मैंने पहले भी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर ये बात कही है कि हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ प्रोटेस्ट में शामिल हैं, हम खुद भी, मैंने भी तमाम पाकिस्तान लेवल पर हमने 20 तारीख को जुमेरात को जी एक प्रोटेस्ट का ऐलान किया है जो तमाम माइनॉरिटीज के लोग मिलकर करेंगे, बिलखसूस मैं उसे लीड करूंगा लाहौर में, और हाथों की जंजीरें बनाकर हम कौमी यकजहती का सबूत देंगे। और मैं समझता हूँ कि तमाम अंबिया कराम, तमाम इल्हामी किताबें जो हैं हम उसके मानने वाले और उसका एहतराम करने वाले लोग हैं और इसमें कोई दूसरी राय वाली बात नहीं है कि हम किसी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते।
बहुत शुक्रिया कामरान माइकल साहब ने बताया कि 20 को पाकिस्तान के जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं वो लाहौर में एक बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे इस तौहीन में इस फिल्म के खिलाफ, और 21 सितंबर को बहुत सी दीगर तंजीमों की तरफ से भी यौम एहतजाज का ऐलान किया गया है, उसकी क्या तफसील है वो पूछेंगे साहबजा फजल करीम साहब से, लेकिन एक वक्फे के बाद। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे सुनामी की, पाकिस्तान में बहुत सुनामी के दावे किए जाते हैं लेकिन क्या नमूस रसालत के हक में भी कोई सुनामी आ सकता है? साहबजा फजल करीम साहब, क्या 21 सितंबर को आप नमूस रसालत के हक में कोई सुनामी बरपा कर सकते हैं इस मुल्क में?
जी मैं ये समझता हूँ कि ये मुसलमानों का मुश्तरक मसला है और मिनारिटी ने भी जुमेरात को ऐलान किया है कि हम भी जंजीर बनाएंगे, हम भी अम्बिया और मुरसलीन की तज़ीम व तकरीम के लिए इलामी किताबों का अदब और एहतराम कर देंगे, बहुत अच्छी बात है। हमें बींग मुसलमान ये चाहिए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ये ऐलान किया है कि 21 सितंबर को पूरे मुल्क के अंदर उस मलऊन के खिलाफ एहतजाज होगा। मैं अवाम से, ताजरों से, वकला से, उलमा से, सियासतदानों से, मुस्लिम लीग नून से, काफ से, पीपल्स पार्टी से, MQM से, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से ये अपील करता हूँ कि नबी पाक वसल्लम की नामूस के तहफ़ के लिए जुमे को मुकम्मल तौर पर हड़ताल हो और मुत्तफ़क़ा तौर पर पुरअमन एहतजाज हो।
अच्छा मैं ज़रा आगे चलूँ जी, आप इनकी हड़ताल की कॉल की हमायत करते हैं? जी
मैं बिल्कुल हमायत करता हूँ। मैं पूरे पाकिस्तान में बसने वाले अहले तशय्यो, अहले तसन्नुन, अहले मसीही हज़रात, हिंदू, जो भी पाकिस्तान में बसने वाले पाकिस्तानी हैं, सबसे अपील करता हूँ कि जुम्मे को पाकिस्तान की तारीख का अजीम दिन करार दिया जाए नामूस रसालत की दिफा के लिए, और सब घरों से बाहर निकलें, औरतें, बच्चे, बड़े बूढ़े निकलें, मुल्क के अंदर दुनिया देखे कि पाकिस्तान
लेकिन
पुरमंत्री शमा रसालत के परवाने रहते हैं। अलबत्त प्रॉपर्टी को नुकसान, हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, हमारी अपनी चीज़ें, इनको हमने नुकसान नहीं पहुँचाना है, लेकिन दुनिया देखे कि पाकिस्तान के नाम, इस्लाम के नाम पर बनने वाले पाकिस्तान के अंदर किस तरह गैरतमंद पाकिस्तानी घरों से बाहर निकले हैं। उस दिन छुट्टी का दिन होना चाहिए। हाँ। मेरी गुजारिश है हुकूमत से कि छुट्टी का ऐलान करे और पूरे मुल्क के अंदर पुरअमन ऐसा अजीम एहतजाज हो कि दुनिया वाले और इन जो लोग जिन्होंने इस तरह की फिल्म बनाई है उनको भी एहसास हो कि इससे उन्होंने जो मकसद हासिल करना था वो हासिल नहीं किया, बल्कि एक वतन में बसने वाले सारे पाकिस्तानी इकट्ठे हो गए हैं।
नजर गुंदल साहब,
और एक और बात मैं ये भी कहूंगा, जिस तरह आफिया सदीकी को, उस मजलूमा खातून को, हमारी बहन को, इस वतन की बेटी को अमरीका ले गए हैं बिला जुर्म और उसके सजा देकर जेल में डाला हुआ है, इस फिल्म के बनाने वाले डायरेक्टर को, लिखने वाले को, काम करने वाले को, फंडिंग करने वालों को भी जान इस्लाम के हवाले करना चाहिए ताकि इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, इसलिए कि तमाम मुसलमा मकातब फिक्र में जो मुसलमानों के हैं ये लोग वाजिबुल कत्ल हैं।
अच्छा खैर ये तो एक बात की बात है, इसको अगर कोर्ट के जरिए अगर सजा
कोर्ट में आना चाहिए।
नजर गोंदल साहब, साहबजा फजल करीम साहब ने अपील की 21 सितंबर को मुलगीर एहतजाज होना चाहिए, जाफरी साहब ने इसकी हमायत कर दी है, साथ मुतालबा किया है कि 21 सितंबर बरोज़ जुमातुल मुबारक हुकूमत पाकिस्तान मुल्क भर में आम तातील का ऐलान करे ताकि पूरी कौम इस पुरमन एहतजाज में शरीक हो सके।
मैं ये रेलिवेंट नहीं है लेकिन एक फिक्रा मुझे बड़े समटाइम्स ये मुझे कि वही एक मुल्क में वो दहशतगर्द है, दुनिया के किसी खत्े में जो दहशतगर्द है किसी दुनिया के दूसरे खत्े में वो जिहादी हो जाता है। एक तो इसका ये फर्क ख़त्म होना चाहिए, दूसरा मैं ज़ाती हैसियत में इस इशू पे मैं यकीनन पुरअमन जुलूस का पुरजोर हामी हूँ और इसकी हमायत करता हूँ, लेकिन जहाँ तक तल्लक है गवर्नमेंट का यकीनन वो भी इन लोगों के जज्बात की हमेशा उसने तर्जमानी की है और वो यकीनन कोई फैसला
आप एहतजाज में शरीक होंगे।
मैं बिल्कुल हूँ इसमें,
मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत इस सिलसिले में हमारे साथ तआवुन करे तो ये पाकिस्तानी आवाम के लिए भी बेहतर होगा, बैन अक्वामी दुनिया के अंदर अच्छा मैसेज जाएगा, आलमी इस्लाम
एक तो अच्छा मैसेज चला गया ना आज जाएगा, अच्छा मैसेज ये गया कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन और मजलिस वादत मुसलमीन के सेक्रेटरी जनरल अलामा नासिर अब्बास जाफरी साहब ये तो इकट्ठे हो गए, इन्होंने तो एक
और हुकूमत भी इंशाल्लाह
पीपल्स पार्टी भी और कामरान माइकल साहब मुस्लिम लीग नून के सेनेटर वो भी साथ हैं, और
मुझे जो कोताहियां हुई हैं उनका भी इजाला हो जाएगा अगर हुकूमत इसमें शामिल हो जाए
तो हुकूमत शामिल होगी जी बताएं
जी। मैं इस वक्त
उम्मीद कर रहा हूँ हमारे नुमाइंदे हम इनको नुमाइंदे मुकर्रर करते हैं कि वजीर आजम से और सदर से बात कर लें,
पहले भी
हमारे ईमान के
चले है कि हुकूमत ने कभी भी आवाम की तर्जमानी करने का हक जो है वो कभी अपने हाथ से नहीं जाने दिया और अभी यकीन है वो बेहतर फैसला करेंगे,
आम तातील का ऐलान कर दें, हम आपके बहुत मुश्किल
चले ये आपकी बात वहां तक पहुंचा देंगे। बहुत शुक्रिया नजर मोहम्मद गोंदल साहब, नासिर अब्बास जाफरी साहब, जनाब साहबजा फजल करीम साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और साहबजा फजल करीम साहब ने 21 सितंबर को मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दी, नासिर अब्बास जाफरी साहब ने उस पर लब्बैक कहा है बल्कि हुकूमत से मुतालबा किया है आम तातील की जाए। वफाकी वजीर नजर मोहम्मद गोंदल साहब ने कहा कि वो खुद पर्सनल कैपेसिटी में 21 सितंबर के एहतजाज में ज़रूर शरीक होंगे लेकिन उन्होंने उम्मीद जाहिर किया कि हुकूमत जो है वो भी 21 सितंबर को जो एहतजाज होगा उसमें पुरअमन एहतजाज में ज़रूर शामिल होगी। लेकिन एक बात बहुत अहम है कि हमने सिर्फ एहतजाज नहीं करना लेकिन एहतजाज के साथ साथ पुरअमन तरीके से अपना इतिहाद जो है वो दुनिया को दिखाना है, और पुरअमन तरीके से अगर हम इतिहाद दिखाएँगे पाकिस्तान के अंदर और OIC जो है वो भी इफ़ेक्टिव किरदार अदा करे, और OIC की तरफ से अगर यूनाइटेड नेशंस में एक करारदाद मुजम्मत नहीं बल्कि एक कानून साजी की करारदाद को पेश किया जाए और वो मंजूर हो जाए तो आलमी सतह पर अंबिया कराम की तौहीन का रास्ता रोकने के लिए कोई मौसर कदम उठाया जा सकता है। और 21 सितंबर जो है वो तमाम पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए एक इम्तहान का दिन है, एहतजाज ज़रूर करें लेकिन बार बार मैं ज़ोर दे कह रहा हूँ पुरअमन एहतजाज करें। और आखिर में ये शेर अर्ज़ है कि मोहम्मद से वफा तू ने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।